Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, लेकिन हम आज अपनी खुशी कहीं ना कहीं खो चुके हैं। जिंदगी की इस दौड़ में हम आगे इतना बढ़ चुके हैं कि हम रुककर अपनी लाइफस्टाइल को देखते तक नहीं हैं कि किस तरह की दिनचर्या हम पूरे दिन में जी रहे हैं। इन्हीं कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से लाइफस्टाइल डिजीजेस हमें हिंडर कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमें रुकावटें ला रही हैं ताकि हम स्वस्थ ना रह सके। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज में सबसे बड़ी डिजीज है मोटापा, तो इस मोटापा से कैसे डील करें?
सर, जब हम मोटापा की बात करते हैं तो इसका अर्थ वैसे तो ओबेसिटी लेते हैं,
करेक्ट,
ओबेसिटी, किंतु साथ में ओवरवेट भी। दो चीजें इसमें हम ले लेंगे, ओबेसिटी एंड ओवरवेट,
ठीक है,
दोनों ही मोटापा के शब्द में जैसे कैटेगरी में आते हैं। तो पहले तो हम इसको, मैं समझता हूँ, परिभाषा दे दें हम इसकी, ताकि अपने दर्शकों को पता लगे कि कब वो अपने आप को क्या है मोटे हो गए
जी।
अगर हम हर व्यक्ति की हाइट इंचेस में ले लें, जैसे कोई 5 फुट 6 इंच का व्यक्ति है तो उसकी हाइट कितनी हो गई इंचेस में? 66 इंचेस हो गई, 66 इंच हो गया। तो उसकी हाइट, उसका जितनी हाइट है 66 इंच, अगर वो पुरुष है तो उसकी हाइट, उसका वेट भी 66 किलो होना चाहिए।
ओके,
सिंपल फार्मूला है। एक दूसरा फार्मूला है कि अगर आपकी, जैसे सेंटीमीटर में अगर ले लें हम, अगर आपकी ये हाइट है जैसे 150 सेंटीमीटर, तो आपका वजन 50 किलो होना चाहिए।
ओके,
तो वैसे इस तरह से हम ले लें, तो आई थिंक जो सेंटीमीटर वाला इतना एक्यूरेटली अप्लाई नहीं करता जितना कि इंचेस वाला फार्मूला अच्छा अप्लाई करता है।
ओके,
तो आप इसमें देख लें, और बहनों के लिए, महिलाओं के लिए यही उसमें से 5 माइनस कर दें।
अच्छा,
जैसे अगर कोई 5 फुट की महिला है तो उसकी हाइट ऐसे 5 फुट है, माना कितने, 60 इंच ना,
60 इंच,
उसमें से 5 माइनस कर दें।
ओके,
उनका वेट 55 किलो होना चाहिए।
ओके,
अगर कोई कोई पुरुष है उसकी हाइट 5 फुट है तो उसका वजन 60 किलो होना चाहिए।
ओके,
ये उसका आदर्श वेट हो गया, आइडियल वेट हो गया, राइट?
राइट।
तब जो हम मोटापा कब कहेंगे, ओवरवेट कब कहेंगे, और ओबेसिटी कब कहेंगे?
जी,
ओबेसिटी तब कहते हैं जब 10% नॉर्मल से 10% ज्यादा हो।
ओके,
सपोज कोई 66 किलो का है, 60 केजी उसका वेट होना चाहिए।
ओके,
5 फुट उनका हाइट है, कोई पुरुष है उसकी 5 फुट हाइट है
जी,
और वो 60 केजी उसका वेट होना चाहिए। तो अगर वो 66 किलो, 10% 6 किलो हुआ, 66 से अगर ज्यादा हो गया तो ओबेसिटी हो गई।
ओके,
राइट। और 60 से लेकर के 66 के बीच में 61 किलो, 62 किलो, 63, 64, 64.5, अगर ऐसा है तो वो हो गया
ओवरवेट,
राइट? सिंपल मैं तरीके से बताया,
करेक्ट।
ऐसे बहनों के लिए भी हम कर सकते हैं,
ठीक है।
तो उसमें -5, सपोज एक महिला है जिसकी हाइट 5 फुट है और उसका हाइट कितने, उसके वजन कितना होना चाहिए, वजन 60 माइनस, हाइट 60 इंच है,
-5,
तो कितना वेट होना चाहिए, 55। तो इसका इसका अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 60.5 के अगर उसके ऊपर वेट है तो ओबेसिटी है।
ओके,
अगर 55 से लेकर के 60.5 के बीच में है
तो वो नॉर्मल वेट है,
वो ओवरवेट है।
अच्छा, वो ओवरवेट है। ओके,
ओबेसिटी और ओवरवेट में क्या फर्क है?
ओके ओके,
ये पता नहीं होता दर्शकों को, पता नहीं होता, समझते हैं कि नहीं नहीं ये बात है। तो जब हम ओबेसिटी कैटेगरी में कब आए, ओवरवेट की कैटेगरी में कब आए, क्योंकि ओबेसिटी कुछ अलग, ओबेसिटी से जो पैदा होने वाली बीमारी कुछ अलग होंगी,
करेक्ट।
ओवरवेट में आपको एक तरह की डेंजर जोन में आप हैं, आप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं,
एग्जैक्टली।
और ओवर ओबेसिटी होने के बाद कई सारी बीमारियों के आप दास बन जाएंगे, कई सारी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे,
बिल्कुल।
ऐसे ही, अच्छा, जहां का ओवरवेट की बात कर, अंडरवेट की बात भी कर ले, अंडरवेट कोई समस्या नहीं है
जी।
आपका वजन अगर आपका 60 किलो होना चाहिए और आपका वजन 45 किलो है तो उसमें समस्या नहीं है, इट इज गुड,
ठीक है,
राइट
जी।
किंतु आप वीक महसूस करते हैं, आप बहुत कमजोर महसूस करते हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, आपसे सांस फूलता है, देन आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा।
करेक्ट।
तो एक अंडरवेट की बहुत समस्या है किसी किसी को, जिनको होता है, तो इस बात को बिल्कुल चिंता ना करें। जिनका वजन 45 किलो होना चाहिए 55, तो दे शुड बी हैप्पी,
राइट,
दे विल लीड ए बेटर लाइफ। एक बात और मैं कह देना चाहूंगा यहाँ पर, कई बार जो ओबेसिटी वाले पीपल होते हैं, कभी कहा जाता है कि पहले कहते थे मोटापा माना बीमारियों की हर बीमारी के घर,
करेक्ट,
राइट। किंतु आज जो साइंस में रिसर्चेज आई पिछले 30 साल में, और स्पेशली पिछले डिकेड में 10 साल में, वो क्या बता रही है? वो कहती है मोटापा होना इतना खतरनाक बात नहीं। वो कहती फैट बट फिट,
करेक्ट।
फैट पर्सन, एक आदमी 100 किलो का आदमी है बट फिट रहता है, डेली मॉर्निंग वॉक करता है, जिम में जाता है या थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करता है, खान पान को ठीक कर लेता है,
करेक्ट,
अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लेता है, फिट है, 100 किलो वजन है, डजंट मैटर, उसको वापस 70 किलो पे लाने की बात नहीं है,
करेक्ट।
वो 100 किलो का रहकर के अपने आप को फिट रखे, अपने खान पान को, जीवन शैली को बदल ले, तो ही इज ए बेटर पर्सन देन ए थिन पर्सन बट हु इज नॉट फिट,
करेक्ट।
वो गलत खाना खाता है, सैर नहीं करता है, गलत समय पर सोता है। ये जो पतला आदमी है, मतलब इसको हम कहें बहुत दुबला सा आदमी है, ये इसको ज्यादा बीमारियां होंगी उस 100 किलो वाले आदमी से,
करेक्ट।
इसलिए जीवन शैली, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक,
बिल्कुल,
स्वस्थ जीवन शैली।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हमने ये तो जान लिया कि किस तरह से मोटापा एग्जैक्टली है क्या, अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के मोटापे होते हैं।
मोटापा जो है, एक तो जैसे हो गया ओवरवेट और ओबेसिटी वाली बात आई, दूसरा एक होता है कि एक मोटापे को साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं, कहते हैं ना,
true.
थोड़ा सा पेट आगे आ गया, थोड़ा सा चेहरा भर गया, है ना, तो फोटोजेनिक फिगर हो जाती है ना, गोल गोल
गोल गोल
गोल गोल जाता है, तो अच्छा लगता है,
करेक्ट,
माँ को तो बहुत अच्छा लगता है अपना बेटा ऐसा हो जाए तो ये जो है इसको बोलते हैं एनवायबल ओबेसिटी।
ओके,
एनवायबल माना लोग हमें ऐसे लोग ऐसा बनना चाहते हैं,
अच्छा,
है ना, किंतु एक वजन से ज्यादा बढ़ जाए तो, अब जैसे बोलते कई लोगों का पेट इतना बड़ा हो जाता है और सारा हाथ पैर बिल्कुल, मतलब पैर भी ऐसे हो जाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं और बुरी सांस फूलता है, तो इनको देख के लोग को हंसी आती है,
करेक्ट,
तो होती है वो लाफेबल ओबेसिटी,
ओके,
लोग हंसते हैं, तो हमें एनवायबल चाहिए कि लाफेबल चाहिए,
वो डिसाइड करना है,
ऐसे दोनों ही नहीं चाहिए, ठीक है
जी, बिल्कुल,
योर वेट शुड बी नॉर्मल,
एग्जैक्टली,
मतलब दैट शुड बी, जो आपको कैटेगरीज दी गई है उसके अंदर होना चाहिए, ना कि ना, दोनों ही नहीं चाहिए, ये जो साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं है, मोटापा इज नेवर ए साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मोटापा इज ऑलवेज ए साइन ऑफ डिजीज, बीमारियों का घर कहते हैं, तो एक तो ये वाली ओबेसिटी हो गई, किंतु इसके अलावा भारत में एवरेज आदमी मोटा नहीं है, ओवरऑल वेट देखे तो ठीक है, उसके हिसाब से हमारे 40% लोग मोटे हैं, किंतु अगर विदेशों से कंपेयर करें, आज यूएसए कंपेयर करें, यूके से कंपेयर करें, तो हमारे देश में फिर भी लोग इतने मोटे नहीं, पर उसमें हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा है, हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा है,
करेक्ट,
डायबिटीज सबसे ज्यादा है, जोड़ों की बीमारियां बहुत है, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा है, जीआरडी एसिड का रिफ्लक्स करना बहुत ज्यादा है, और ये कोलन कैंसर जो कि पहले विदेशों की बीमारी थी,
अच्छा,
बढ़िया था कैंसर, आज भारत में बढ़ती जा रही है बीमारी, सीएससीए कोलन जो कि वेस्ट की बीमारी थी, फिर जो है, तो भारत में क्या स्पेशल बात है कि मोटापा इतना ज्यादा ना होते हुए भी, वेट बहुत ज्यादा ओबीज नहीं होते लोग भारत के, किंतु फिर भी उनको तकलीफ है, आपने देखा होगा कई बार कि लोगों के हाथ पैर पतले पतले होते हैं, पेट मोटा होता है,
खाली पेट मोटा होता है, करेक्ट, देखा,
इसको बोलते हैं पियर शेपेड ओबेसिटी,
पियर
शेपेड, नाशपाती होती है ना,
अच्छा हाँ,
ऊपर से पतली बीच में गोल, ऐसे होते ना
जी, जी,
तो पियर शेपेड ओबेसिटी,
ओके,
ये जो ओबेसिटी है इसमें विसरल फैट ज्यादा होता है, अंदर का फैट,
ओके,
स्किन पे इतना ज्यादा फैट नहीं होगा, ये तो अंदर जो फैट है ना, जो पेट के बीच में, इधर इधर हाइज पे, हिप्स पे, और ये पेट पर, ये अंदर ज्यादा फैट होता है,
ओके,
तो ये जो ओबेसिटी है इससे अंदर एक नेगेटिव प्रोसेस शुरू होता है, ये हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, ये हमारे पेनक्रियास को अफेक्ट करती है, और ये हमारे किडनीज को अफेक्ट करती है, और ये हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है, और इन टर्न ये फिर हमारे दिमाग को इफेक्ट करती है। तो ये जो पियर शेप्ड ओबेसिटी, आपका वजन होना चाहिए 72 किलो। अगर सपोज हमारी 100 अक्रम कहे, हमारी हाइट है 6 फुट, कितना 60 प्लस 12, हाँ अगर 7 फुट हमारी, सॉरी 6 फुट हमारी पूरी हाइट है, तो वजन कितना होना चाहिए हमारा, 6 मतलब इंचेस में चला जाए ना,
हाँ जी, इंचेस,
तो 72 किलो होना चाहिए, और मेरा वेट 72 है
जी,
तो फिर भी मुझे ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, डायबिटीज क्यों हो रही है?
करेक्ट, मतलब हाइट के साथ में वेट का इक्वेशन भी सही है, हाँ। तो भी बीमारियां हो रही हैं, ये क्यों हो रही है?
ये क्यों हो रही है? वो उनको सेंट्रल ओबेसिटी,
ओके,
इसको सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं
जी।
तो हाथ पैर पतले हैं, पेट मोटा है,
पेट मोटा है,
जिसे पियर शेप्ड ओबेसिटी कहते हैं। ये मतलब इस तरह से दो तरह की, मतलब उसमें बताया, एक तो एनवायरेबल ओबेसिटी और लाफेबल ओबेसिटी, दोनों खतरनाक है,
बिल्कुल,
दोनों से बचना है, एनवायरनमेंट होना चाहिए और लाफेबल होना चाहिए,
ठीक है।
इसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स,
ओके,
आपकी जो हाइट है, अगर मीटर्स में ले लें, उनका वेट आप केजी में ले लें, उसको हम डिवाइड करें हाइट इन मीटर्स, सपोज आपकी है 6 फीट है
जी,
है ना, तो उसमें अगर हम ले लें, तो उसको अगर हम इस तरह से डिवाइड कर लें, तो हमारा जो है उसमें क्लियर कट हमारा वो आ जाएगा, है ना, तो हम उसमें वेट को फिर हमने उसमें ले लें, और उससे जो हमारा एक, उससे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, तो भार वो 25 से कम होना चाहिए,
ओके,
25 से 30 है, तो आप उसमें फिर कैटेगरीज बनी हुई है, आप ओवर वेट कब है बीएमआई के हिसाब से, और फिर आपका ओबीज कब है,
ठीक
है। तो इंडिया में उसको हम और भी कम कर देते हैं, क्योंकि इंडिया की मुझे बताया ना मैंने आपको, वहाँ 25 से भी कम 23 पे चले जाते हैं, 23 से ऊपर वाले को हम कहना शुरू करते हैं ये
मोटापे का, वो क्या है?
बहुत बड़ा सिंपल सा अगर हम फॉर्मूला ले लें, मैंने बताया कुछ जीन्स की भी बात की थी हमने पहले पिछले एपिसोड में, जीन्स का जेनेटिक मेकअप भी हमारा ऐसा माँ बाप से मिलता है,
अच्छा,
पर जेनेटिक मेकअप की बात नहीं है। अगर आज से आप 50 साल पहले चले जाए, तो एवरेज आदमी इंडिया का कैसा था, भारत का कैसा था?
फिट,
फिट था, लीन एंड थिन था,
करेक्ट,
एक्टिव था, क्यों था? क्योंकि उसका खान पान मोटा था, उसको सैर करने जाना ही पड़ता था खेतों में या कहीं भी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और प्लस डिस्टेंसेस बहुत थे, तो पैदल करना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी इतनी, साइकिल से जाते थे,
करेक्ट,
तो एनवायरमेंट पोल्यूशन कम था, न्यूक्लियर जॉइंट फैमिलीज थी,
करेक्ट,
सपोर्ट सिस्टम अच्छे थे, भगवान में विश्वास था, है ना, और खूब सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स सस्ते थे, अनाज महंगा था,
अवेलेबल
फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा सस्ते थे,
correct.
तो वो हर एक आदमी खाता था, तो इसलिए आम आदमी एक्टिव था हर आदमी, तो वो तो एक एरा था
जी।
अब जो है, अब देखो उसमें क्या क्या बदल गया, अगर हम उसी समझ जाए तो सारे कारण हमको समझ आ जाएंगे। आप 70 से पहले के मनुष्यों को देख लो, भारत को देख लो, और 70 के बाद का भारत देखो,
करेक्ट,
इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, गांव में रहने वाले युवक जो बेरोजगार थे, जो चाहते थे शहरों की तरफ आए, इंडस्ट्रीज लगाई गई, गाँव के बाहर लगाई गई, गाँव के शहरों के पास लगाई गई, तो उस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग आए, घर छोड़ करके आए, अपना जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, तीन तीन पीढ़ी साथी, दादा माता पिता, दादा दादी माता पिता और बच्चे, तीन तीन पीढ़ी एक साथ घर में पलती थी, वो फैमिली सिस्टम टूट गया, सपोर्ट सिस्टम टूट गए, तो अभी वो अकेला हो गया, उसकी शादी हो गई, शादी के बाद अपनी वाइफ को भी लेकर के शहर में आ गया, अब दो जने, दो ही हैं, और कई बार दोनों ही काम करने वाले,
करेक्ट,
तो उनका खान पान कैसा होगा, दोनों नौकरी करके आते हैं,
जल्दी जल्दी बनाना होता है कुछ ना,
जल्दी जल्दी बनाएंगे या फिर बाजार में खा के आ जाएंगे, होटल में खा के आ जाएंगे, और फूड क्या होगा, कैसा फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, जी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वहाँ पर स्ट्रेस है,
बिल्कुल,
तनाव है, प्रेशर्स हैं, डेडलाइंस हैं, उसको मीट करना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में भी ये सब बातें हैं, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? वो जब कहते हैं रॉन्ग माइंड, स्ट्रेस्ड माइंड गोज फॉर रॉन्ग फूड.
करेक्ट.
रॉन्ग मूड, या कहते हैं मूड डिसाइड्स अवर फूड.
करेक्ट.
जब हमारा मूड डिप्रेशन में होता है, इरिटेटेड होते हैं, हम बिटरनेस फील कर रहे होते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन होती है आपके अंदर, देन यू गो फॉर स्वीट्स एंड फ्राइड फूड. हॉट एंड स्पाइसी चाहिए. टाइम नहीं है तो क्या करेंगे? क्वालिटी ऑफ फूड भी गया और क्वांटिटी ऑफ फूड भी गया. टेंशन में खा रहे, कहाँ खा रहे, कितना खा रहे, पता नहीं.
पता नहीं. ट्रू.
कई बार पूरा खाना खाने के पूछो कैसा था खाना, क्या खाया, पता ही नहीं. ऐसा भी होता. लेट टू बेड, लेट टू राइज हो जाता है.
करेक्ट.
तो बेसिकली ये पिछले जो पिछले 50 साल की आप हिस्ट्री देख लें तो इसमें सारे कारण समाये हुए. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, गांवों का शहरीकरण, ज्वाइंट फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली बन जाना, फिर स्ट्रेसेस, तनाव, गलत खान पान, सैर, लेट टू बेड, लेट टू राइज, देर से सोना, देर से उठना, और फिर एक्सरसाइज लगभग ना के बराबर. अगर है तो वो शाम को है, जिम के अंदर है, खुली हवा में नहीं है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ गया इंडस्ट्रीज के आने से, और फिर स्ट्रेस को दूर करने के लिए अल्पकाल जो तनाव पैदा हो रहा है उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या रखते हैं लोग? कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स. नहीं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो पीते हैं, उनमें भी कैफीन मिली होती है, थोड़ी देर के लिए इलेटेड महसूस करते हैं. चाय कॉफी का बहुत ज़्यादा सेवन होता है, फिर स्मोकिंग, गुटखा, पान मसाला, वो सब एडिक्शन के थोड़ी देर उससे फ्रीडम, फ्यू मोमेंट्स के लिए अच्छा फील करने की कोशिश, शराब और फिर और ड्रग्स. ये सब जो है, देखिए ये सारे कारण है मोटापे के.
ओके.
राइट.
जी.
और एक कारण मैं भूल गया.
हाँ जी.
सबसे बड़ा कारण टेलीविजन.
रियली?
टेलीविजन
मोटापे का कारण.
मोटापे का कारण.
वो कैसे?
क्योंकि आप जब आपके पास टाइम नहीं होता और जब आप टीवी देखना शुरू करते हैं, चाहे न्यूज देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं, एक के बाद एक आप 3-4 घंटे उसमें बिता देते हैं.
करेक्ट.
उसको इडियट बॉक्स भी बोलते हैं ना कई बार. तो हम लंबा समय टेलीविजन पे बिताते हैं और टेलीविजन पे बैठा बैठा आदमी इज ग्रिप्ड बाय द सीरियल, उसमें क्या सस्पेंस है.
करेक्ट.
क्या थ्रिल है, या मूवीज देखते हैं तो उसमें आदमी उठता नहीं है वहां से, उसको वहीं बैठे बैठे खाने को चाहिए. और क्या चाहिए खाने को?
पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड साथ में
एकदम मतलब वहीं बैठे बैठे फास्ट फूड, जंक फूड है ना,
जंक फूड.
उसको खाना भी, वो खाना भी आजकल कैसे खाते हैं? खाना खा रहे, टीवी देख रहे.
करेक्ट.
दिमाग टेलीविजन के अंदर है और हम खाना खा रहे. तो ये जो है, और प्लस उसमें जो एंजाइटीज पैदा होती हैं, उसमें जो एंगर, सस्पेंस और सब कुछ होता है, और न्यूज का आजकल चैनल भी देख लीजिए आप, वहां भी बहुत एंजाइटी पैदा करते हैं.
करेक्ट.
तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में ओबेसिटी वाले. इसको बोलते हैं काउच, वो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है कि आप बैठे बैठे मोटे होते जाते हैं, काउच पोटैटो बोलते हैं.
अच्छा. जी बिल्कुल.
तो ये जो है आज की
ये मतलब सारे
मुख्य कारण,
इनमें
सब बातें जाती हैं. मतलब अगर आप 50 साल की हिस्ट्री देख लें भारत की, तो आपको सारे कारण नजर आएंगे.
बिल्कुल डॉक्टर साहब, कारण तो हमने जान लिए. अब मैं जानना चाहती हूँ कि किस इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली है क्या, जो मोटापे का मैकेनिज्म अगर हम जान ले तो शायद हमारे लिए वो बेटर होगा कि हम उसके साथ हील कर पाए.
तो मोटापे का कारण मैंने, एक तो जीन्स है ना, जो माता पिता से आपको हेरिडिटरी बैकग्राउंड मिली है. अगर आपके दोनों पेरेंट्स मोटे हैं, कई बच्चे जन्म से ही मतलब जन्म से ओबीज होते हैं.
करेक्ट.
स्पेशली डायबिटिक्स जो मदर होती है ना, उनका बच्चा पहले से ओवरवेट होता है.
अच्छा.
वो फिर बाद में जाके फिर ओवरवेट होता जाता है ना, तो डायबिटिक्स मदर्स का जो बच्चा होता है, तो वो जो है इस तरह से वो. प्लस हमारे घर में जीवन शैली कैसी है, हम लोग सबके घर में फास्ट फूड्स खाते हैं, ज़्यादा फ्राइड खाते हैं, तो बच्चा भी वही डेली खा रहा है. हमारी फैमिली का ट्रेडिशन कैसा है, तो वो उसमें एक बड़ा भारी रोल है. हेरिडिटरी बैकग्राउंड, फिर फैमिली में आपने क्या 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 देखा, क्या समझा, क्या कैसे आपका रूटीन है फैमिली का.
करेक्ट.
तो एक तो ये हो गया मैकेनिज्म. अब मैकेनिज्म क्या होता है, जब हम खाते हैं, जब हमने खाना खाया, और खाना हमारा सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ, और साइंस भी इस बात को मानती है, कि जब हम खाना खा रहे हैं, अगर हम खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, किसी प्रेशर के अंदर खा रहे हैं, टेंशन में खा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और खाने को जल्दी जल्दी बिना चबाए प्रॉपरली चबाए अंदर भेज रहे हैं।
करेक्ट।
जबकि हमारे दो सेंटर्स हैं, एक सेटाइटी सेंटर है यहाँ पर, एक रिवार्ड सेंटर है। तो सेटाइटी सेंटर अगर हम जितना खाने को चबाएंगे तो वो सेटाइटी सेंटर पे उसका करंट जाता है दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, तो वो जो है उतना ही संतुष्ट होता जाता है।
अच्छा।
और जब खाना खा रहे हैं तो जब खाना चबाते हैं अच्छे से तो आपकी लार पैरेटोइड, यहाँ पैरेटोइड ग्लैंड होती है, सेमेंडिबुलर ग्लैंड होती है, उनसे लार निकलती है, जूसेस निकलते हैं और जूसेस में मिलते हैं और उसमें भी उसमें केमिकल्स होते हैं, टाइलिन है और दूसरे केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं जो खाने को वहीं पचाते हैं।
अच्छा।
मुँह में। तो अगर आपने 100 ग्राम खाना खाया अच्छे से चबाया तो वो उसमें 100 ml उसमें जूसेस मिल जाएंगे। 200 ml हो गया, 150 ml खाना खाया, 150 ml जूस मिल गया, 300 ग्राम में पेट भर गया।
वेरी नाइस।
राइट। तो एक जो आपने ये खाना चबा के खाना, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब आज जो जल्दी फास्ट लाइफ की वजह से आदमी चबाता नहीं खाने को, जल्दी जल्दी 5 मिनट में 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। मैं देखा लोग खड़े खड़े खाना खा लेते हैं। हमारे पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन थी जब तक खाना इतना चबाओ कभी निगलना ना पड़े। एक पुरानी कहावत है, खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। पानी हमेशा घूट घूट करके पीना चाहिए, शांति से पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, और खाना इतना चबाना चाहिए कि अंदर हमें निगलने की आवश्यकता ना पड़े, आराम से जाता जाए। तो एक मैं समझता हूँ जो कभी भी आम कोई समझते नहीं इस बात को, ये जो है एक बहुत बड़ा कारण है कि आज इंसान की फास्ट लाइफ हो गई है जिसकी वजह से प्रॉपरली खाना नहीं चबाता। तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज खाएगा, ज़्यादा कैलोरीज बना। अब मैंने खाने से मुझे 2 चपाती जल्दी जल्दी खाई, टेस्ट में खाई, है ना, जी पे लगी, सब्जी थोड़ी टेस्टी है ना, साथ में कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे को बहुत पसंद है वो खा रहा हूँ, जल्दी जल्दी खा रहा हूँ, डिमांड है अंदर से तो मैं खा रहा हूँ। तो क्या होगा, मैंने 200 ग्राम खाना था 150 ग्राम, खा लिया अभी कितना, 300 ग्राम और उसमें जूस मिल पाया 100 ग्राम। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने खाई गई फूड गया, जब उसको हम एक तो ब्रेक डाउन में ज़्यादा मेहनत लगेगी, फिर उसको हम एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। राइट।
True।
तो 150 ग्राम में मुझे बेसिक सिंपल फार्मूला क्या है
जी,
आप इतनी कैलोरीज खाते हैं, आपने एक दिन में 1800 कैलोरी खाई
जी,
भोजन को भोजन की वैल्यू हम कैलोरीज में गिनते हैं, तो आपने 1800 कैलोरीज खाई और आपने 1800 खर्च कर दी, तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। आपने इतना काम किया कि आपने 1800 खर्च कर दी रोज की, प्रोटीन मेकअप हमारी रिपेयर में वी एल टी एर में काम आ गई, और जो हमने स्टार्चेस खाए कार्बोहाइड्रेट्स वो हमारे उसमें आ गए, तो आपका वेट बढ़ेगा क्या?
बिल्कुल नहीं।
आपने 1800 खाई, 2200 खर्च की, तो 400 जो कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा खर्च किए
वो
आपका फैट बॉडी से निकलेगा।
एग्जैक्टली।
राइट।
क्या
मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, मोटा सा, सभी अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि एक बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आपने जमा कितना किया, खर्च कितना किया। आज इंसान क्या कर रहा है, आज इंसान खा तो 25 हो रहा है, जंक फूड देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब जैसे चना है, जैसे हमारा गेहूँ है, रोटी है हमारी, रोटी में सब इसमें जितने भी ग्रेन्स होते हैं, वाइट ओट्स होते हैं, दलिया है, सब चपातीस हैं, और जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज मिलती है।
अच्छा।
मतलब एवरेज चपाती हमारी 20 ग्राम की होती है या 15 ग्राम की होती है, तो 15 ग्राम में हमें 45 कैलोरीज मिली, ठीक है।
ओके।
और उस पर 1 ग्राम आपने घी लगा दिया, सॉरी 5 ग्राम 1 चम्मच घी डाल दिया, तो उस 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती,
9 कैलोरीज।
राइट।
ओके।
तो कितना हो गया, आपने 15 ग्राम की रोटी खाई उससे 45 कैलोरीज मिली, और जो आपने 1 ग्राम घी खाया उससे कितनी कैलोरीज मिली, 45, उससे तो 90 कैलोरीज हो गई।
करेक्ट।
तो आपने 1 चपाती खाई, 1 चपाती ऊपर रख के खा ली उसके अंदर घी के रूप में, तो ये जो 90 कैलोरीज होगी, तो आपकी इंटेक कितनी ब्रेकफास्ट में 400 कैलोरीज होनी चाहिए या 300 के, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, तो 400 कैलोरीज होने के बजाय आपने कितनी खा ली, 600 कैलोरीज। पराठा खा लिया, उसमें 1 चम्मच तो लग ही जाता है एक पराठे में, तो आपने तो डबल से भी ज्यादा कर दिया ना।
एग्जैक्टली
तो ये एक तरीका है जिससे हमारी ये बढ़ती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, फूड डिसाइड्स अवर मूड है ना।
करेक्ट।
ओ सॉरी, मूड डिसाइड्स अवर फूड। फूड आल्सो डिसाइड्स अवर मूड।
करेक्ट।
बट इन अपोजिट भी ठीक है
जी।
काफी सारे स्टडीज हुई है। तो एक मूड एक बड़ा कारण है। स्ट्रेस, जब आप तनाव में होते हैं, टेंशन में, हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड हैं एड्रिनल ग्लैंड, उनसे जो शराब निकलते हैं उसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आपने नाम का सुना होगा, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स बहुत कॉमन वर्ड है, स्टेरॉइड्स।
बिल्कुल।
वो स्टेरॉइड वहां से निकलता है। जब जब आपको तनाव होता है, याद रखिए, आपको स्टेरॉइड निकलता है।
ओके।
कहते हैं स्टेरॉइड खाने से आदमी मोटे होते हैं, सभी जानते हैं दर्शक।
बिल्कुल।
स्टेरॉइड्स को जहर समझते हैं। तो स्टेरॉइड निकलता है कब? जब आप जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात फील करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं, डर लगता है अंदर से, किसी पर शक अनुमान करते हैं, तो आपके अंदर से कॉर्टिसोल निकलता है।
ओके।
और ये कॉर्टिसोल क्या करता है? ये कॉर्टिसोल आपके अंदर पानी को और नमक को जमा करता है।
अच्छा।
पानी नमक को जमा करेगा और साथ साथ ये हमारे लिपिड्स को भी स्टोर करता है।
ओके।
अगर कोई आदमी स्टीरॉयड लंबा समय खाता रहे
तो मोटापा आएगा,
तो उसका चेहरा मून लाइक फेस हो जाता है।
ओह।
चांद जैसा चेहरा हो जाता है, चंद्रमुखी है ना,
मतलब फैट आ जाता है,
फैट आ जाता है। okay. पेट इतना मोटा हो जाता है।
करेक्ट।
कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं इसको। तो यही चीज आज इंसान, हर एक इंसान कर रहा है।
करेक्ट।
सारा टाइम एक ना एक तनाव में रहता है, स्ट्रेस में सदा रहता है, और एक विशेष साइकिल है ये। तनाव में रहेगा ये निकलेगा, फिर उसको शुगर को कम करने के लिए उसको मतलब जो स्ट्रेस होगी तो वो क्या करेगा, लीवर में हमारा ग्लूकोज जमा रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उससे ग्लूकोज निकालेगा। एनर्जी चाहिए ना।
exactly.
क्योंकि हाइपर एक्टिव हो गई सेल्स।
करेक्ट।
स्ट्रेस के कारण तनाव ज्यादा सोच रहे हैं आप ना, तो उससे इमीडिएट ग्लूकोज चाहिए, लीवर से निकलेगा, वो ग्लूकोज निकला, पेनक्रियाज पे उसका असर पहुंचेगा, तो वहां से इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन निकालेंगे, इंसुलिन शुगर कम करेंगे, शुगर कम करेंगे तो फिर हम ज्यादा खाएंगे और जल्दी जल्दी खाएंगे। कारण ये है, जब इंसुलिन निकलती है बॉडी में तो हम जल्दी जल्दी खाते हैं।
करेक्ट।
अगर इंसुलिन लेवल नॉर्मल रहे तो हम आराम से खाएंगे।
करेक्ट।
चबा चबा के खा। आज इंसान चाह के बदल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि हर समय स्ट्रेस, हर समय ये निकल रहा है, उसको कम करने की ग्लूकोज निकल रहा है। मैं डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ
जी,
मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल।
हर एक के अंदर ही प्रोसेस चल रहा है, वो निकल रहा है, उसको फिर कम, उसको जब शुगर थोड़ा सा कम होती है तो फिर हमारे अंदर से हम लोग खाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं।
करेक्ट।
वो जल्दी जल्दी खाने से फिर क्या होता है कि हमारे अंदर एक विशेष साइकिल बन जाती है। तनाव खत्म होता नहीं, एक तनाव जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता नहीं है, तीसरा आ जाता है, तीसरा जाता नहीं, चौथा आ जाता है, एक के बाद एक स्ट्रेस हमारी लाइफ में, हमारी हैबिट ही बन गई है स्ट्रेस में रहने की, गुस्सा करने की, चिंता करने की, वो एक चक्र में फंसे हुए हैं।
करेक्ट।
और उसी कारण से फिर हम ये इंसुलिन ज्यादा निकलती रहती है, हम खाते रहते हैं
जी।
ऐसे फूड्स जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, टेस्टी है, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स जो हमारे बहुत सारी एनर्जी देते हैं
जी।
आपको पता है, एक ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जाते हैं, हम नॉर्मली एक गिलास दूध में एक चम्मच चीनी डालते हैं, उसमें 3 चम्मच चीनी होती है
कोल्ड ड्रिंक के अंदर,
200 ml में, 250 ml में 3 चम्मच चीनी, 15 ग्राम चीनी, शुगर होती है। यू कैन इमेजिन हम कितना ज्यादा शुगर ले रहे हैं।
करेक्ट।
और उसको कम करने के लिए इंसुलिन, बीटा सेल ज्यादा काम करेंगे, बीटा सेल ज्यादा काम करेंगे, इंसुलिन निकालेंगे, तो क्या होता है, हम खाते भी रहते हैं, शुगर निकलती भी रहती है, शुगर लेते भी रहते हैं और इंसुलिन निकलती रहती है।
करेक्ट।
तो एक दिन ये प्रोसेस आ जाता है कि इंसुलिन भी बढ़ी रहती है और शुगर भी बढ़ी रहती है।
अरे।
इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस।
ओके।
जब इंसुलिन लेवल ज्यादा रहने लगते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा, इंसुलिन धीरे धीरे सेल्स के थक जाती है ना काम करते करते,
बिल्कुल,
तो धीरे धीरे इंसुलिन फिर कम बन, स्टोर खत्म होते जाते हैं, इंसुलिन बननी कम हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ते हैं लगातार, डायबिटीज हो गई। एक तरफ
टाइम हो गया, ठीक है,
कोई बात नहीं, ये पूरा कर देता। तो इससे देखिए आप कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक तरफ डायबिटीज आ गई, एक तरफ इंसुलिन लेवल ज्यादा रहे, हाइपरटेंशन हो गया, और तीसरा इसका असर लिवर पे हो रहा है।
करेक्ट।
कॉर्टिसोल का, स्ट्रेस का, उससे क्या हो रहा है, हमारा लिवर में एचडी गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी बनते हैं
जी।
तो उस स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, आपका लिवर ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बनाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है। तो जैसे आपने शुरुआत की खुशी से
जी,
खुशी जैसे खुराक नहीं, तो खुश नहीं रहेंगे तो लिवर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाता है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बनाता है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है। खून जमाने वाले पदार्थ
ज्यादा बनाता है,
ज्यादा बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स ज्यादा बनाता है,
करेक्ट,
प्लेटलेट्स चिपकने लगती है। इन सब से मिलकर क्या क्या पैदा हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, वेट और बढ़ गया और चौथा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़ गए,
सब एक साथ प्रॉब्लम
क्रिएट कर देता है, डेडली क्वार्टरेट।
ओके,
इसको अंग्रेजी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं।
ओके,
तो ये सब बीमारियों के जनक, जैसे किस तरह से जनक, इसका मोटापा जो है कहते हैं चारों बीमारियों का जनक,
बिल्कुल।
तो ये जो है चारों बीमारियां इसके अंदर आ गई,
बिल्कुल
ये चार आ गई, बाकी इसके बहुत सारे फिर चीजें हैं, जैसे कि इससे क्या होता है, मोटे आदमी के घुटने जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होगा सारे, कॉर्टिसोल से क्या होता है, शुगर लेवल भी आपका जो है ना बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता
है, दिस इज आल्सो वन डिजीज,
वन डिजीज, बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू
हो जाता है, सारी डिजीजेस हो जाती हैं,
खोखली हो जाती है बोन्स, खोखली हो जाती है,
बिल्कुल। तो ये
इस तरह से सारी बीमारियां, फिर आपका एसी जीआरडी, पेट मोटा हो जाता है, वाल खराब हो जाता है
जी,
जल्दी जल्दी पानी पी रहे हैं, खाना चबा नहीं रहे, जी आर डी, गैस्ट्रोइसेफेगल रिफ्लक्स, 30-40% लोगों को होती है,
बिल्कुल,
जो 30-40% लोगों को होती है
जी।
फिर हमारी बैक की प्रॉब्लम्स ना, सांस की एक बहुत बड़ी बीमारी जो आज दुनिया में कहते हैं स्नोरिंग कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, वो आपके जो सॉफ्ट पैलेट है और पीछे की जो फेरिंग्स पैरेंजियल मसल वीक हो जाती है और नीचे गिर सोते हैं आप, गिर जाती है, फिर स्नोरिंग होती है।
ओके,
वो अपने आप भी खुद गहरी नींद में नहीं आ पाते और दूसरों को सोने देते हैं,
करेक्ट,
घर में एक समस्या हो जाती है और ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाती है, फिर उससे वापस ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और सब बीमारियां,
सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर साहब, आज इतनी सारी बातें हमने सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हमें अपने खाने को पूरी तरह से चबा करके खाना चाहिए, थोड़ा टाइम दे करके, उससे ऑटोमेटिकली वो खाना डाइजेस्ट आधे से ज़्यादा आपके मुँह में ही हो जाएगा और उससे उससे आपकी मोटापे की जो ये प्रॉब्लम है ये शायद सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच।
इसमें एक मुख्य बात ये भी, हम मतलब स्ट्रेस
इसके बाद नहीं ले सकते,
नहीं, वो अगले एपिसोड में लेंगे, इसमें आप बता दे, ये
बोलो, अच्छा मैं बोलूं, हाँ
क्या मतलब इसमें जो मुख्य जो ट्रिगर है वो स्ट्रेस है,
नहीं अब ट्रिगर स्ट्रेस है, मतलब
मोटापे का ट्रिगर स्ट्रेस है, मतलब तनाव है,
लेकिन ये इसमें कनेक्टेड नहीं,
नहीं इसमें ना बताया ना जैसे वो इस पे जो काम करती है ना एड्रिनल ग्लैंड पे जो काम करती है,
हाँ जी,
वो स्ट्रेस से फिर फूड है, रॉन्ग फूड है,
हाँ क्या बोलना है मैं समझी नहीं,
मतलब ये आप कहिए कि इसमें जो जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी ये जो शुरू कैसे होता है मोटापा कैसे शुरू होता है अंदर,
अच्छा
उसका कैसे तनाव, आज का जो तनाव कैसे ये आज की हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, उससे कैसे एक चेन शुरू होती है, विशेष साइकिल शुरू होता है, उससे आज मोटापा बढ़ता जा रहा है, उससे
तो मतलब स्ट्रेस जो है मेन कारण है मोटापे का, आप ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है
ये बताना चाहिए,
ठीक है। दोस्तों आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं मोटापे की उसका सबसे बड़ा, हाँ कुछ बोला दीदी, मुझे लगा दीदी ने कुछ बोला, मेरे कान बज रहे हैं, दीदी की आवाज मेरे कान में गूंज रही है चलो लेट्स गो। दोस्तों आज हमने क्या जाना, क्या क्या बोला, अच्छा थैंक यू नहीं बोला है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, तो अभी सिर्फ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो ले लो, ठीक है ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना वैल्यूबल टाइम दिया, ओम शांति। दोस्तों आपको भी ओम शांति बोलना पड़ेगा,
अच्छा
हाँ आप रिटर्न में बोल दीजिएगा, ओम शांति,
ओम शांति
जी। दोस्तों आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं मोटापे की, मोटापे का सबसे बड़ा कारण आज है स्ट्रेस, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल रहेंगे आप महसूस करेंगे कि आपका मोटापा बढ़ता ही जाएगा और वो एक विशेष साइकिल की तरह है, उसे तोड़ने के लिए आप खाने को सही तरीके से चबाइए, थोड़ा टाइम लीजिए विदाउट टीवी, टीवी अगर देख करके आप खाना खा रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस आपके अंदर पहुंच रहे हैं और वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली सही स्लीप कहाँ से आ गया? नहीं, मैं खाने पीने का बोलती ही नहीं हूँ, वो मैंने इधर बोल दिया है, मैं सिर्फ यही ले लेती हूँ, ठीक है? चलो लेट्स गो। दोस्तों आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं मोटापे की, मोटापे के अंदर में एक सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर आप ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका वज़न ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है, तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए, ऑटोमेटिकली आपके वज़न कम हो जाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।